यरमिया अध्याय 44, यरमिया अध्याय 44 पद 1। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में रहते थे उनके विषय यरमिया के पास ये वचन पहुंचा। ये इसराइल को परमेश्वर का अंतिम संदेश है। वे लोग जिन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और मिस्र चले गए, वही स्थान जहां से परमेश्वर एक दिन उन्हें छुड़ाकर लाया था। परमेश्वर उन्हें अपना अंतिम वचन देता है। जितने लोग मिस्र देश में रहते थे उसके विषय यरमिया के पास ये वचन पहुंचा। यरमिया अध्याय 44 पद 1 से लेकर 3 तक। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपनेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे उनके विषय यरमिया के पास ये वचन पहुंचा। इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं वो सब तुम लोगों ने देखी है। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वो बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे जिन्हें ना तो तुम और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे। ध्यान दे कि उनके साथ क्या हुआ। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि वे दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे। उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। यरमिया अध्याय 44 पद 4 से लेकर 8 तक। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यत वक्ताओं को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि ये घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूं, पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप ना जलाएं। इस कारण मेरी जल जलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जो इसराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, तुम लोगों क्यों अपनी ये बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच में नाश किए जाओ और कोई ना रहे, क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो जिससे तुम नाश हो जाओगे और पृथ्वी पर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नाम धराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। तुम अपनी क्यों बड़ी हानि कर रहे हो? परमेश्वर ने कहा, मूर्ति पूजा और देवताओं की उपासना के कारण ही तुम अपने देश से खदेड़े गए और आज तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है। तुमने इसके बाद भी मिस्र में आकर वही काम किया कि यहां भी मूर्तियों की उपासना करने लगे, जिस कारण परमेश्वर ने तुम्हें दंड दिया। तुमने उस काम से अब भी मन नहीं फिराया। तुम मिस्र में हो और परमेश्वर से दंड पा रहे हो, फिर भी वही घृणा के काम कर रहे हो। यरमिया अध्याय 44 पद 9। जो बुराइयां तुम्हारा पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? ये रोचक विषय है कि यरमिया उनके अपराधों में उनकी स्त्रियों को भी दोषी ठहराता है। वे भी इसी घृणित काम की दोषी है। विवरण पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी स्त्रियां इस कुकर्म में उनसे आगे थी तथा पहल भी करती थी। भ्रष्ट नारित्व प्रायः राष्ट्र की नींव हिलाने में प्रमुख कारण होता है। स्त्रियों के मृदु कोमल स्वभाव के कारण उनमें आत्मिक अनुभव की ऊंचाइयों की क्षमता होती है, परंतु भ्रष्ट होने पर पुरुषों की तुलना में नैतिक भ्रष्टाचार की गहराई भी उनमें अधिक होती है। जैसे कि सिमट कर बैठी एक छोटी लड़की यदि दुष्ट हो जाए तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। पुरुष अपने स्वभाव में कुछ कठोर होते हैं और उनकी मानसिकता भी सीमित होती है, जबकि एक स्त्री अपने मृदु और कोमल स्वभाव के कारण अच्छाई में बहुत ऊंची उठ सकती है तो बुराई में बहुत नीचे भी गिर सकती है। एक स्त्री की मानसिकता का क्षेत्र पुरुष से बहुत अधिक होता है, अतः यदि स्त्री का पतन हो तो वो तल तक गिर जाती है, यदि ऐसा हो जाए तो नाश ही होता है। यही कारण है कि स्त्रियां कलीसिया में अगुवाई कर पाती हैं। वे आत्मिक कार्यों में, प्रार्थना समूह में, सेवा दल आदि में अगुवा की भूमिका निभाने में दक्ष होती है। ये उनका मृदुल स्वभाव है जो आत्मिकता में आने पर ऐसा सुगंधित, महिमा से पूर्ण, उत्प्रेरक तथा देखने में आकर्षक होता है। ये उसका ईश्वर और आत्मा से युक्त कोमल स्वभाव है। अब क्योंकि पुरुष होने के कारण मेरा स्वभाव भी कठोर है, इसलिए जब मैं घर आता हूं तब मेरी पत्नी मुझसे कहती है, आपने ध्यान दिया कि आज की आराधना में क्या हो रहा था? क्या मैंने ध्यान नहीं दिया? जब जो हुआ उसे वो कोमल और व्यापक आत्मिक लय पर देखने में सक्षम थी। ये उसकी आत्मिक अंतर्दृष्टि थी, और जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि हां, ऐसा ही हो रहा था, परंतु मुझ पर ना तो उसका प्रभाव पड़ा ना ही मैंने उसे अर्थपूर्ण समझा। स्त्रियां आत्मा के साथ अधिक सुसंगत होती है और उनकी ऊंची क्षमता तथा अंतर्दृष्टि के साथ उन्हें आत्मा में आचरण करते देखना कितना मन भावन होता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु इसका दूसरा रूप त्रासदीपूर्ण होता है। यरमिया पत्नियों को भी दोष देता है कि उन्होंने भी पूरा पूरा साथ दिया, इसलिए वो उन्हें भी दोषी करार देता है। उनकी दुष्टता थी कि आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ। यरमिया अध्याय 44 पद 10, और ना वे डरते थे। ये उनकी पत्नियों के विषय यरमिया का कहना है। यरमिया अध्याय 44 पद 10 से लेकर 14 तक, और ना वे डरते हैं और ना मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं, और बचे हुए यहूदी जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मरकर मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश के रहने वालों को भी दंड दूंगा कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने ना पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुओं को छोड़ कोई भी वहां ना लौटने पाएगा। एक छोटा सा समूह ही बचा रहेगा जो भाग निकलेगा। यरम्याह अध्याय 44 पद 15 से लेकर 17 तक। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती हैं, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यरम्याह को ये उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने की, जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे। वे यरूशलेम के सड़कों में बाबुल की देवी स्वर्ग की रानी सेमीरामिस तथा उसके पुत्र तामूस की उपासना करते थे, मां बेटे की उपासना। वे सेमीरामिस को ईश्वर की माता कहते थे। इसी प्रथा से मरियम की उपासना का उदय हुआ, क्योंकि धर्मशास्त्र में तो मरियम की उपासना का निर्देश नहीं दिया गया है। मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूं, और अधिक जानने के लिए आप द टू बेबिलोन्स अंग्रेजी पुस्तक को पढ़ें। उस पुस्तक के लेखक का नाम हेस्लप है। उसने कलीसिया के उन सब अंध विश्वयों को बाबुल की प्रथाओं में पाया है। वही दोष आरोपण जो परमेश्वर ने इसराइल पर रोपित किया आज कलीसियाओं में पनपा हुआ है, और वो भी प्रभु के नाम में। प्रकाशित वाक्य को विस्तार से देखें। अब देखिए कि स्त्रियां क्या कहती हैं। जो जो मन्नते हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे। यरम्याह अध्याय 44 पद 17 से लेकर 19 तक। जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम के सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्रकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में, क्या हमारे पति नहीं जानते कि हम ये सब करती है? क्या हमें अपने अपने पति की अनुमति प्राप्त नहीं है? वे जानते हैं कि हम क्या करती हैं। ये उन स्त्रियों का उत्तर है जो उन्होंने यरम्याह को दिया। देखिए, उन्होंने सच्चाई को कैसा मोड़ दिया है। वे अपनी मृत्यु और विनाश को स्वर्ग की रानी की पूजा त्यागने का परिणाम मानती है। मनुष्य सच्चाई का रूप कैसा बिगाड़ देता है, और अपने जीवन की त्रासदी का दोष परमेश्वर को देता है, और कहता है, जब तक वो परमेश्वर से दूर था तब तक उसके साथ सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। यहां भी वे अपने विनाश का कारण स्वर्ग की रानी की पूजा का त्याग बता रही है। जब तक हम उसकी निष्ठावान थी, वो हमें आशीषों से मालामाल करती थी, हमारे पास भरपूर भोजन था। जब तक हमने उसे धूप जलाना ना छोड़ा, तब तक हम समृद्ध थे। परंतु अब हम पर ये सब विपदाएं आ पड़ी है, और फिर हमारे पति भी जानते हैं कि हम क्या करती है। यरम्याह अध्याय 44 पद 20 से लेकर 22 तक। तब यरम्याह ने क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोगों ने ये उत्तर दिया, उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वो यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण ना किया? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक ना सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया। यरमिया सीधे जानबूझकर अंकित करता है कि स्वर्ग की रानी की पूजा के कारण ही तो उन पर परमेश्वर का दंड आया। तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया। यरमिया अध्याय 44 पद 22 और 23। यहां तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चेतावनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण ये विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। अपनी समझ को सुधारो, क्योंकि तुमने यहोवा का त्याग किया था और अन्य देवी देवताओं की उपासना की, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें दंड दिया था। यरमिया अध्याय 44 पद 24 और 25। फिर यरमिया ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और ये कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी हैं, उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया। सो अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। सो तुमने स्वर्ग की रानी से मन्नत मानी है और उसे पूरा करके ही रहोगे। यरमिया अध्याय 44 पद 26। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है। यहां ध्यान दीजिए कि परमेश्वर फिर अपने नाम की सौगंध खा रहा है, क्योंकि उससे बड़ा नाम और कोई नहीं है। यरमिया अध्याय 44 पद 26 से लेकर 28 तक। अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह ना कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूंगा। सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे, तब तक कि उनका सर्वनाश ना हो जाए, और जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर परमेश्वर की विश्वास योग्य संतान हमेशा बची ही रहती है। परमेश्वर त्याग और पाप से बचकर कुछ लोग परमेश्वर भक्त होते हैं। आपको ध्यान होगा, एलिया सीनाय के रेगिस्तान की गुफा में छिपा हुआ था। परमेश्वर ने उससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो उसने उत्तर दिया, मैं तो तेरे लिए जलन रखता हूं, परंतु इन लोगों ने तेरे सब भविष्य वक्ताओं को मार डाला है, और केवल मैं ही हूं जो सारे इसराइल में बचा हुआ हूं। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि ये सच नहीं है, मेरे पास अभी 7,000 वफादार मनुष्य है जिन्होंने बाल को दंडवत नहीं किया है। परमेश्वर उन्हें जानता था, ये वो शेष रहे भक्त जन थे। हम भी कई बार अपने आप को ही परमेश्वर के भक्त मानते हैं, परंतु परमेश्वर के पास सदैव बचे हुए भक्त जनों का एक समूह होता है। परमेश्वर यहां भी आने वाले विनाश की घोषणा करता है, परंतु उसके भक्त जन अपने देश लौटेंगे। यरमिया अध्याय 44 पद 28 में आगे लिखा है, यहूदा देश में पहुंचेंगे, वे थोड़े ही होंगे और मिस्र देश में रहने के लिए आए सब यहूदियों में से जो बच जाएंगे वे लोग जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा व उनका। अंत में तो ये तो पता ही चल जाएगा कि कौन सच्चा है। ये केवल समय का फेर है। झूठे भविष्यद्वक्ता कुछ समय के लिए फूलते फलते हैं, कुछ समय के लिए उनका बड़ा नाम होता है और उनके अनुयायी भी बहुत होते हैं, परंतु समय उनका दुश्मन होता है। समय आने पर उनका पर्दाफश होता है। जिमी जोन्स का भी बड़ा नाम था, उसके अनुयायी भी बहुत थे, बहुत लोग उसके पीछे पीछे थे। वो कुछ समय तो खूब चमका, परंतु समय ने उसे मार ही दिया। उन्होंने खूब नाम कमाया, उनके धर्म सिद्धांत भी विचित्र ही थे। उन्होंने जन समूह को मंत्र मुक्त किया, परंतु समय आने पर सच्चाई पता चलेगी। यही परमेश्वर कहता है कि समय साक्षी देगा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है, मैं या वे। यरमिया अध्याय 44 पद 29 और 30। इस बात का मैं ये चिन्ह देता हूं, यहोवा की ये वाणी है, कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिसे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होपरा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। हमारे पास इतिहास है कि हम इतिहास पढ़कर पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। नबूकदनेस्सर ने आकर मिस्र को जीता और परमेश्वर का कहा पूरा हुआ। परमेश्वर का कहा सदैव पूरा होता है, इसलिए उसके विरुद्ध कभी खड़े ना होना।